السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
معاف کیجیے گا
تشریف لائیے.
ڈاکٹر صاحب، مجھے باہر 2 گھنٹے رکنا پڑا. جتنا بھی میں نے سیکٹری سے کہا، یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر مصروف ہے. یہ کیا حالات ہیں یہاں کے؟
محترمہ، میں نے کتنی دفعہ آپ سے کہا کہ آپ اپنے ٹائم سے پہلے تشریف لائی ہیں، آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا.
محترمہ میری، آپ اطمینان رکھیے، آئیے. مس امیری، آپ کو غصہ نہیں کرنا چاہیے. بہرحال کلینک میں ہر روز ایسے واقعات پیش آ سکتے ہیں. میں نے ہمیشہ نگین اور شہرام سے بھی کہا ہے کہ آپ کے کام کے اصولوں میں سے ایک غصے پر قابو پانا اور نرمی برتنا ہے. آپ پریشان نہ ہو، آہستہ آہستہ سمجھ میں آ جائے گا.
معاف کیجیے گا،
آپ کا موبائل مسلسل بج رہا ہے.
جی، گھر والے ہیں.
یقیناً آپ کی والدہ ہوں گی.
ڈاکٹر صاحب، آپ کی مریضہ تیار ہیں.
ٹھیک ہے، ابھی آتا ہوں.
معاف کیجیے. السلام علیکم نگی. مہربانی. ہاں، میں بھی ٹھیک ہوں. ارے، کتنے بجے؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے، اس وقت تک میرا کام بھی ختم ہو جائے گا. لیکن پہلے ہمیں خود جا کر گھر کو دیکھنا چاہیے. اچھا ہوا تو امی لوگوں کو بھی لے جائیں گے. ٹھیک ہے، ملیں گے. خدا حافظ.
یہ وہی جگہ ہے جس کے بارے میں بتایا، یہ مرکز ہے اس کا.
باہر سے تو برا نہیں ہے یہ.
اور کیا، میں ابھی چوکی دار سے مل کے آتا.
ہاں جاؤ جاؤ، جب پارٹنر بنے گا تو دوڑے گا، یعنی دل سے کام کرے گا. تم بھی اگر محنت سے کام لوگے تو ورک شاپ کے چلنے کے کچھ عرصے کے بعد یہاں پر ایک باغ بھی خرید سکتے ہو، ہے نا؟ اس کو بھی پارٹنر بنائیں گے،
کیوں نہیں.
ہاں،
یہ لیجیے، دیکھیے یہ.
اچھا، مبارک ہو، مبارک ہو. ماشاء اللہ، خوب کھلا بھی ہے.
اور کیا،
اور کتنی مشینیں ہیں؟
ارے نہیں نہیں، یہ تو امانت ہے، ہماری نہیں ہے، ان کو لے کے جائیں. ارے یہ بھی، اس کی بھی جگہ نہیں تھی لوگوں کے پاس، اس لیے انہوں نے رکھ دیا تھا، اب لے کے جائیں گے لوگ.
تو پھر اس میں ہمارا کیا ہے جہاں؟
ابھی بتاتا ہوں. دیکھیے امیر صاحب، یہ مشین مکمل طور پر ہماری ہے، اور یہ پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دروازہ، یہاں ایک ورک شاپ ہے، اس وقت بھی یہاں کام ہو رہا ہے. ان کا ہم سے کوئی مطلب نہیں. اس کا دروازہ ادھر ہے، اس کا اصلی گیٹ ادھر ہے. اوپر بھی 2 کمرے ہیں، حسینی صاحب کے ہیں، اور ان کا دروازہ پیچھے ہے. اس سے ہمارا مطلب نہیں.
مطلب نہیں،
یہ جو حصہ ہے، یہ جو تمام چیزیں ہیں وہ آپ کی.
ارے بھائی، سارا لے لیتے جان بیٹا، پورا لے لیتے، کیونکہ بہرحال ہمیں آئندہ اپنا کاروبار تو پھیلانا ہی ہے نا.
امیری صاحب، 100 ملین میں اور میری 2 کروڑیوں میں اس کے علاوہ کچھ نہیں مل سکتا تھا. آپ کو شاید قیمتوں کا اندازہ نہیں ہے. ارے یہاں کا جو مالک ہے، اس کو پیسے کی چونکہ ضرورت ہے، اس لیے اس ریٹ میں دے رہا ہے. ورنہ یہ جو مشینیں تو بہت مہنگی ہے، انہوں نے بہت سستے قیمتوں میں دے دیا ہے. اگر سونا اور ڈالر کی قیمتیں اوپر نہ چڑھی ہوتی تو میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں تھا کہ میں اب آ کے شریک ہوتا آپ کے ساتھ. نیما کی وجہ سے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کام شروع ہو جائے. انشاءاللہ یہ کام شروع ہو جائے، ورنہ تو بہرحال میں تو اپنا کام ہی کر رہا تھا. لیکن بہرحال اگر خدا نخواستہ اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو میں لے جا کے کچھ نہ اپنا کام کر لوں گا، پھر سے جو میرا کام ہے اسی کو دوبارہ شروع کر دوں گا. بہرحال آپ کا فیصلہ ہے.
ابو، کام شروع کرنے کے لیے ٹھیک ہے.
ہاں شروع کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن میں
بھائی صاحب ہٹ جائیں، ہٹ جائیں.
یعنی آپ لوگوں نے پروڈکشن شروع کر دی ہے؟
نہیں نہیں، یہ تو اسی ورک شاپ کا مزدور ہے، جب یہاں آئیں گے تو الگ کر لیں گے، کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں اس کا اسٹاک ہے. میں اب بتائیے، جا کے بات کروں، فائنل کر دوں اس کو، آپ کیا کہتے ہیں بتائیے.
دیکھو جہان بیٹے، یہ مشین تو اب ہماری ہے نا.
جی
کیا تم جگہ کے لیے؟
جی ہاں جی ہاں، ورک شاپ ہی کے لیے، مشین تو ہماری ہے. تو جاؤں فون کروں؟
ہاں جاؤ جاؤ.
تم کتنی مدد کرنا چاہتے ہو؟
5 ملین تو مان. تم کسی کو جانتے ہو؟
تمہیں جلدی ہے،
सोचा वर्कशॉप के शुरू होने से पहले पैसे दे के रखूं।
हाँ, कुछ लोगों को मैं जानता हूं।
अला, तुम्हें तो पता है आज के दौर में 5 मिलियन ज्यादा पैसा नहीं, किसी ऐसे शख्स को दो कि उसे अपने बुनियादी मसाइल हल कर सके।
ऐसे बदकिस्मत और बेचारे लोग भी हैं जो 4-5 लाख के लिए तरस रहे हैं। अब तुम दौलतमंद हो गए तो 5 मिलियन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है।
ताना ना दो आला, अब तुम भी हमारे लिए तैयबा बन गए।
क्या बताऊं, किसी जमाने में 5 मिलियन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी रकम होती थी।
अब भी है। एक वो वक्त था कि समझ नहीं आ रही थी कि किससे कर्जा लूं, कागजात कहां से लाऊं। अब जब पैसा आया है तो 100 किस्म की दूसरी उलझने साथ लाया है।
इसका मतलब है आपके हाथ एक बड़ी रकम लगी है, उसको हलाल करना चाहते हैं ना?
अब इसको तुम्हारे सुपुर्द करता हूं वाला, जैसा मुनासिब समझो।
आपकी वर्कशॉप कब तक चल पड़ेगी?
जगह तो हासिल कर ली है, नीमा भी मशीनें और दूसरे आलात खरीदने में मसरूफ है। आजकल में चल पड़ेगा इंशाल्लाह। ये लो वाला।
इतनी ज्यादा नकद रकम क्यों साथ में लेके चलते हो?
आला भाई, एक वक्त था जब 5 मिलियन जेब में नहीं आता था, अब इतने हो गए।
हाँ। तुम ये पैसे अपने पास रखो, अगर कोई मिला तो तुम्हें इत्तला दे दूंगा। इतनी भी फजूल खर्ची मत करो, क्योंकि मुमकिन है वक्त से पहले, बहुत पहले तुम्हें ये पैसे वापस लौटाने पड़ जाएं।
तशरीफ लाइए मोहतरमा।
शुक्रिया।
खुश आमदी।
शुक्रिया।
अरे अम्मी, पहले आप बाएं तरफ आएं, हॉल इस तरफ है, बच्चों आएं। और उस तरफ उसके कमरे हैं, देखें कितना खूबसूरत हॉल है, रोशनी भी बहुत ठीक ठाक है, खूबसूरत है ना? आइए अब आपको कमरे दिखाती हूँ, सामान आओ।
देखा तैयबा, आखिर हम यहाँ आ गए। तुम्हारी अम्मी कहाँ रह गई?
ये इसका एक और कमरा है, आपके कमरे के बाद ये सबसे बड़ा है, एक छोटा बरामदा भी है, और हाँ इसका टॉयलेट भी यूरोपी है, अच्छी खासी अलमारियां भी हैं, और मुझे जमाने के हाथ से छुटकारा मिल जाएगा।
वाह, ये तो हो गया मेरा कमरा।
बहुत चालाक है, ये मेरा कमरा है।
जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में कूदा नहीं जाता।
अरे ओ बड़े, कहा ना कि ये कमरा मेरा है, जो अपने लिए एक और कमरा ढूंढ लो।
देखो ये घर बहारे ने ढूंढा है, कमरे भी उसको पसंद करने दो। यहाँ नजदीक एक जगह वर्कशॉप के लिए देखिए, आओ।
और इसको किस सामान से भरेंगे?
मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इतने बड़े घर का हमें क्या करना है।
लगता है कि आपको छोटे घर की आदत हो गई है। हाँ, ये इतना भी बड़ा नहीं, कमरे तो देख लिए और मालूम है कि यहाँ बावर्ची खाना है। आइए अम्मी, देखिए कितना बड़ा है, कितना कुशादा है, अलमारियां तो देखे कितनी खुली और जादार है। अम्मी जान, आपका मजा नहीं आ रहा है? हमारे घर से बिल्कुल काबिल मुकायसा नहीं है। इधर आए, यहाँ भी एक और दरवाजा है जो डायरेक्ट हॉल में खुलता है, आइए।
मैं पुराने जमाने के लोगों की तरह सोचता हूँ, इतने बड़े मकान के किसी कोने में वर्कशॉप भी तो बना सकते हैं। तैयबा बेगम, अगर पसंद कर लिया तो कहो मामला फाइनल कर दें।
भाई यहाँ की पगड़ी कितनी देनी होगी?
हमारे पैसे के रेंज में है।
मुझे बात करने दो।
100 मिलियन तुमान।
100 मिलियन तुमान?
क्योंकि मालिक एक मुतमईन शख्स की तलाश में थे, और आप शहराम साहब के रिश्तेदार हैं तो वो इस कीमत में दे रहे हैं, वरना बिल्कुल नहीं दे रहे थे। आप पसंद कर लें, मैं कंसेशन ले लूंगा।
देखो हमें कंसेशन चाहिए।
मुर्तजा, चलिए एक दो जगह और देख लें।
नहीं अम्मी, यही मकान ठीक है। जनाब आप 80-90 मिलियन में फाइनल कर सकते हैं?
नहीं पता, मालिक से बात करना पड़ेगी, वहाँ इस वक्त रात है, वो घर पहुँच गए होंगे।
ठीक है, तो आप भी अभी फोन करें, अगर रियायत देना चाहते हैं तो मामला फाइनल कर दें, नहीं तो हम कोई और जगह देख लेते हैं।
ठीक है जनाब, मैं फोन करके उनसे बात कर लेता हूँ, देखता हूँ वो क्या
कहते हैं। तैयबा बेगम, ये घर के मालिक नहीं है, डीलर है, लेकिन हमारे फायदे के लिए बात कर रहे हैं। देखो तो कितने अच्छे आदमी हैं। तुमने ऐसा डीलर देखा कभी? हेलो रजा। हाँ बताओ क्या बात।
भाई कहाँ है आप, कब से फोन कर रहा हूँ।
या आप उठाते नहीं, या बंद है या रिसीव नहीं हो रहा है। मुझे भी मजबूर होकर आपके घर आना पड़ा।
कोई बुरा वाकया तो पेश नहीं आया?
मसला कोई पेश नहीं आया है, सिर्फ देखो मेरे दो छोटे छोटे काम हैं, उन्हें अंजाम दे दो।
कैसे काम?
पहला तो यह है कि अगर मुमकिन हो तो सिफारिश करें कि इस घर को जल्दी मेरे हवाले कर दें।
रजा, मैं अब उस कंपनी में काम नहीं करता हूँ।
क्यों?
मैंने रिटायरमेंट ले ली है।
अरे मैं तो कहना चाह रहा था कि तुम सिफारिश कर दो ताकि मेरी किस्त कम रखे।
देखो रजा, मैं शर्मिंदा हूँ, अब मैं वहाँ काम नहीं करता।
ठीक है मुर्तजा, लेकिन अफसोस है कि आप वहाँ से चले गए।
आपका शुक्रिया, कोई काम तो नहीं फिलहाल, खुदा हाफिज।
ठीक है, खुदा हाफिज।
क्या हुआ है?
कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं थी।
मुर्तजा साहब, ये जगह हमारे लिए बहुत महंगी है, आप मुतमईन हैं? जल्दबाजी ना करें।
अरे तैयबा बेगम, मैं कुर्बान जाऊं, अब इस मामले को कर लेने दो ना। वो लड़की भी घर में इंतजार कर रही है, उसके लिए एक अच्छी खबर लेके जाने दो।
ठीक, जैसा आप बेहतर।
खुदा सलामत रखे, चलें।
मैं सलाद बना देती हूँ, अब हमें घर के सामान को भी बदलना चाहिए।
ये नहीं, यहाँ सब सामान बिल्कुल ठीक ठाक है, वो सालन का बर्तन मुझे दो।
इस पुराने सामान के साथ कैसे नए घर में जाएं?
बस जो कुछ है वो यही है।
जरा इस फ्रिज को तो देखें।
इसमें क्या हुआ है?
सामान ले जाने वाले मजदूर भी इस फ्रिज को देखकर घबरा जाएंगे।
फ्रिज को ठीक से काम करना चाहिए और ये काम कर रहा है।
आप सिर्फ मुझे गुस्सा ही दिलाती रहें, इस सामान के साथ अगर ना जाए तो बेहतर है। तुम्हें कुछ कहो ना लाडली।
मैं कुछ कहूँ के लड़ाई हो जाए? मेरे लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उस घर की एक अच्छी बात यह है कि वहाँ मेरा एक अलग कमरा होगा और जिसमें रातों को बैठकर मैं मुताला करूँगी बगैर मुजाहिमत के।
शाबाश, अच्छी बेटी।
लड़कियों, अपनी माँ को इतना तंग ना करो।
अब्बू देखे तो अम्मी क्या कह रही है।
ए, तुम्हारी अम्मी है? अलबत्ता मैं भी सोचता हूँ कि इनमें से कुछ चीजों का बदलना मुनासिब होगा।
भाई किस पैसे से? तय हुआ था कि कर्जे के इस पैसे से आप काम करेंगे, फजूल चीजें खरीद के इसे बर्बाद नहीं करेंगे।
देखो मैं एक स्टोर वाले को जानता हूँ, किस्तों पर सामान दे सकता है।
जो दिल में आए करें।
तुम जाओ, तुम भी जाओ जरा।
मैं टीवी देखने जा रही हूँ।
कहाँ जा रही हो? आओ बैठो, तुमसे काम है।
फरमाइए।
मैं कहना चाहता था कि मैं पूछना चाहता था कि तुम मुझसे राजी तो हो ना?
नहीं।
क्यों? तुम्हें मालूम है तुम्हारी खुशी मेरे लिए कितनी अहम है। कुछ कहोगे नहीं?
नहीं, मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है।
अहम है, तुम खुद भी जानती हो, तुम मेरी शरीके जिंदगी हो।
आपकी पूरी तवज्जो और सारा जिक्र फिक्र यह है कि बच्चों को किसी भी कीमत पर खुश करें, किसी और चीज के बारे में आप सोचते नहीं है। अरे जरा अपने अतराफ पे भी नजर डालें, जरा आंख उठा के देखिए क्या
अच्छा,
हो रहा है।
क्या मतलब है?
आपको खुद समझना चाहिए।
देखो परसों ये दो लड़कियां तो ब्याह करके चली जाएंगी, नीमा भी शादी करके चला जाएगा, मैं और तुम रह जाएंगे इन दिनों की हसरत दिल में लिए कि सब इकट्ठे रहते थे। अब तुम समझो मैं बच्चा हूँ, तुम ही मुझे बताओ मैं क्या करूँ।
जिन दिनों में आपका हाथ खाली था तब भी मेरी बात नहीं समझते थे, अब तो आपको मेरी कोई बात समझ ही में नहीं आती।
रात का खाना बाहर ही खा लेते तो अच्छा था। समझ गया तुम क्या कह रही हो। ये बीबी।
नीमा को फोन करो, कहो आते वक्त कुछ कार्टन ले आए, ये आखिरी था।
ठीक है,
जरूरत नहीं है, अभी बहुत से काम बचे हुए हैं।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
अरे वाह, कमाल कर दिया आप लोगों ने तो।
देखिए पैकिंग करना जो है ये मर्दों का काम होता है, लेकिन आप और नीमा तो बिल्कुल तवज्जो ही नहीं दे रहे।
अच्छा नाजुक काम तुम्हारे जिम्मे, मर्दाना किस्म के हमारे, सख्त काम कह रहा हूँ मैं। तुम दोनों आ जाओ, आ जाओ इधर। मुबारक हो।
मेरा दिल ही डूब गया था, डरा दिया।
मैंने सिर्फ तोहफा खरीदा था।
वाह कितना खूबसूरत है।
बहुत खूबसूरत है।
इतने सारे हंगामे में मेरे लिए खरीदने की क्या जरूरत।
देखो अगर अच्छा नहीं लगा तो दुकानदार से कहा तब्दील कर लेगा।
हाँ अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं ले लेती हूँ।
देखो
मैं खोलती हूँ।
मुझे दो।
कौन है? जी यही है।
ये हो ही नहीं सकता।
अब बहुत अच्छा,
ये तुम पर बहुत
जी घर पे है।
देखो कितना अच्छा लग रहा है तुम पे।
ठीक है अभी उनसे कहती हूँ।
बहुत खूबसूरत है।
बहुत शुक्रिया।
अबू सीआईडी स्टेशन से आए हैं।
सलाम अलैकुम, आप मुर्तजा अमीरी हैं?
जी सलाम अलैकुम, मैं खुद हूँ।
आपको हमारे साथ थाने आना होगा।
पुलिस स्टेशन किस लिए? मुझे लगता है गलत फहमी हुई है।
वहाँ पता चलेगा आपको।
अच्छा यहाँ क्यों नहीं, ये बता दे क्या हुआ।
वहीं पता चलेगा आपको, चलिए मेरे साथ।
तो मुझे घर वालों से
खुद ही उनको इत्तला दे देंगे। आइए आप।
भाई दरवाजे पर हमसाये और हमसायों के सामने आधी रात को बुरी बात है।
चलिए तो आप मेरे साथ चलिए, वहाँ पता चलेगा।
इजाजत दे जरा।
चेकबुक और जनरल रजिस्टर भी ले आओ।
ये फाइल जो आपको चाहिए थी और ये चेक इस फाइल में।
अच्छा तो अमीरी साहब आप कुछ दिन नहीं थे, छुट्टी पर थे?
जी जी मैं छुट्टी पर था, लेकिन अफशार साहब ने खुद मुझे ये छुट्टी दी थी। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी सी मुद्दत की छुट्टी से कोई मसला पैदा होगा कि आप मुझे खींच कर यहाँ ले आए। यकीनन उन्होंने खुद स्टाफ डिपार्टमेंट को कह दिया होगा कि मुझे नहीं मालूम उन्होंने आपसे क्या कहा है, लेकिन ये हमारे स्टाफ डिपार्टमेंट में नहीं है।
इनसे कोई रब नहीं है।
तो ठीक है मैं वापस आऊँगा तो मैं खुद स्टाफ डिपार्टमेंट में चला जाता हूँ, उनसे कामों को निपटा देते हैं। लेकिन आप माशाल्लाह अच्छी तरह से हर चीज पर नजर रखे हुए हैं, मैंने हर जगह ये बात कही है।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइए वो छुट्टी तो अच्छी गुजरी ना?
वल्ला बच्चों के साथ तहरान से बाहर चले गए थे, बहुत अरसे से कहीं नहीं गए थे, बहुत अच्छा वक्त गुजरा।
जी जी सफर की एक खूबी यही है कि इंसान हर चीज से बेखबर रहता है।
बिल्कुल यही, शाबाश।
और हाँ अफशार साहब भी आपके साथ थे ना एक साथ?
अरे अफशार साहब छुट्टी पर जाना चाहेंगे तो हमारे साथ आएंगे क्या? नहीं उनको सफर पर जाना हो तो मुल्क से बाहर जाते हैं।
अच्छा तो आपको बता दिया था कि जाना चाहते हैं?
तकरीबन यानी तय पाया था कि बाहर जाएंगे, लेकिन कतई फैसला नहीं हुआ था, क्योंकि जब कतई फैसला करते तो मुझे बताते हैं। क्योंकि
मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इस मर्तबा उन्होंने आपको नहीं बताया?
नहीं। तो क्या वो सफर पर गए?
हाँ और वो भी कैसा सफर।
आप भी हर चीज पर खूब नजर रखते हैं।
जी हाँ हम हर चीज पर कड़ी निगरानी रखते हैं। जाहिर है कि हमें हर बात के बारे में पता था, लगता है तुम्हें नहीं पता कि कहाँ आए हो।
क्यों नहीं भाई, पुलिस स्टेशन है नहीं है क्या?
ठीक है तो फिर मेरे सामने ड्रामेबाजी मत करो, तुम्हारी कंपनी का मालिक लोगों के 50-60 अरब पैसे हड़प करके रफू चक्कर हो गया।
ये कैसे हो सकता है? ये झूठ बोल रहा है।
क्यों नहीं हो सकता? तमाम दस्तावेजात और कागजात मौजूद हैं। कॉम्प्लेक्स तामीर नहीं हुआ है और उसके हर फ्लैट को जाली कागजात के साथ 10-10 लोगों के हाथों बेच दिया है। जरा अपनी कंपनी के सामने जाकर देखो क्या हो रहा है। लोग अपने सरों को पीट रहे हैं। उठ जाकर देखो, यकीनन तुम्हें सब कुछ मालूम है क्योंकि उसके कलेक्टर हो, है ना?
खुदा की कसम मुझे नहीं मालूम। मेरे फरिश्तों को भी इन बातों का पता नहीं। जो ये कहे उस पर यकीन करना जरूरी है क्या? मुझे बिल्कुल पता नहीं ये शख्स कौन है। इसने जो कहा झूठ कहा है, तुम मुझे जानते हो? मैं तुम्हें जानता हूँ। इसके पास कहने को कुछ भी नहीं है। अगर तुम सच कहते हो तो बताओ कंपनी में किसे का काम करते तुम? है
अपनी जगह पर बैठो। मैंने कहा ना उससे कोई रब नहीं है।
इंस्पेक्टर साहब, मुझे इसके साथ ना मिलाइए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ये 60 अरब का घपला कर चुका है, क्या कहने। मुझे 2 कौड़ियों की खातिर कई दिनों से यहाँ रहना पड़ रहा
है। कोई मतलब नहीं है, तुम भी बात मत करो, उससे काम मत रखो, सिर्फ मेरे सवालों का जवाब दो। तमाम दस्तावेजात और कागजात मौजूद हैं। अच्छे खासे चेक तुम्हारे नाम पर इधर उधर किए गए।
मैं उस कंपनी के कलेक्टर के ओहदे पर था। तमाम अदायगियां और वसूलियां मेरी निगरानी में होती थीं।
मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम है, तुम्हें कोई पैसा नहीं मिला है। देखो सच सच बताओ,
अगर आपका वो पैसा है वो कर्जा है।
कौन सा पैसा?
वो ये 150 मिलियन।
उन्होंने 150 मिलियन तुम्हें कर्जा दिया है, हैं? यानी तुम एक दिन उठ के अफसर साहब के कमरे में गए और कहा कि माफ कीजिए, क्या आप मुझे 150 मिलियन कर्जा दे सकते हैं? उन्होंने कहा कि हाँ लीजिए ये चेक है।
नहीं, मुझे नहीं मालूम, शायद पुलिस स्टेशन में इस तरह कर्जा देते होंगे, लेकिन हमारी कंपनी में कर्जा लेना बहुत मुश्किल है। मैंने कई बार उनके कमरे में जाकर मिन्नत समाजत की, बार बार कहने के बाद आखिरकार उन्होंने कर्जा दिया।
बाकी पैसे कहाँ हैं?
बाकी का मुझे क्या मालूम, मुझे क्या रब्त है?
तमाम दस्तावेजात और सबूत मौजूद हैं और जायजा लिया गया है। बताओ।
आप इंस्पेक्टर शादाब है ना, सही है?
हाँ।
इंस्पेक्टर साहब, उन दस्तावेजात और सबूतों में कोई सुकम नहीं है क्योंकि मैंने मुरतब किए हैं। आपको पता है मैंने उम्र भर बैंक में काम किया है। इन्हीं अफसर साहब ने बैंक में मेरा काम देखा तो इसलिए मुझे दफ्तर यानी अपनी कंपनी में ले गए थे। अगर मेरा काम वहां सही ना होता तो ये चीजें मुझे ना देते। मैं यहां आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं।
तुम्हें पता है इस वक्त अफसर कहां है? आगे की तरफ देखो।
नहीं, आपने खुद कहा था कि बाहर चले गए।
मतलब कंपनी से बाहर तुम्हारा उसके साथ कोई राबिता नहीं था?
नहीं।
ये बताओ, उसके घर के अलावा कोई और जगह ऐसी थी जहां तुमने उसके लिए कोई चीज खरीदी हो, कोई डॉक्यूमेंट ले गए हो, कोई चीज ले गए? हाँ, कोई एड्रेस है?
नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा कोई काम नहीं करता था। करता तो ये साहब बता देते आपको।
ये बताओ, वो अपने जाती कामों के बारे में सिर्फ तुम्हें बताता था?
मैं
सामने की तरफ देखो।
जी जी, मैं था और कंबरी साहब।
हाँ, अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि उसने तुम्हें कोई डॉक्यूमेंट या पैसे लेने के लिए कहीं
डॉक्यूमेंट चेक? मेरा काम ही यही था इंस्पेक्टर साहब। दरअसल मेरा काम यही है कि मैं कंपनियों, फैक्ट्रियों, दफ्तरों और घरों में डॉक्यूमेंट, सबूत, चेक, बॉन्ड्स वगैरह के पीछे जाऊं। ये काम करूं मैं जाकर।
जमानी, इसको एक कागज दो। मैं चाहता हूं कि तुम उन तमाम जगहों के सही एड्रेस लिखो जहां आप तुम्हें भेजा करता था।
शुक्रिया। ठीक है, लेकिन देखिए इन सब के सही एड्रेस इन डॉक्यूमेंट्स में मौजूद
है। सामने की तरफ देखो और लिखो।
जी जी जी, ठीक।
तुमने वो 150 मिलियन पूरा खर्च कर दिया?
जी जी, खर्च कर दिया मैंने। तो क्या उसको वापस देना पड़ेगा?
नहीं मालूम, उसके बारे में तहकीक होगी।
जनाब, मुझ जैसे तजुर्बेकार के अगर माने तो इसके बस की बात नहीं है।
देखा,
तुम बीच में मत बोलो।
ये भी कह रहा है मैं बेगुनाह हूं।
जमान, इसको क्यों यहां ले आए हो भाई? इसका इस केस से क्या ताल्लुक है? इसको ले जाके हवालात में बंद करो।
बहुत शुक्रिया।
कोई बात नहीं।
भाई एक फोन कर देते, एक इत्तला दे देते, सोचा नहीं कि हम लोग परेशान होंगे।
तुम किस आलम है तैयबा बेगम? किस आलम में हो? थाने में मोबाइल ले लेते हैं। वैसे भी मैं पुलिस स्टेशन के बीच में तुम्हें फोन करके कैसे बता सकता था कि ये लोग मुझसे क्या पूछ रहे हैं?
अच्छा बताएं, हुआ क्या है?
कुछ नहीं।
कुछ नहीं के लिए आपको पकड़ के ले गए?
उसी एक्सीडेंट के केस में लाए थे।
उसकी तो फाइल बंद हो गई है।
सच बताएं, क्या हुआ है?
अम्मी क्यों परेशान कर रही हैं? उनको इत्मीनान से बात करने दें।
मैं तुम्हारे अब्बू को अच्छी तरह जानती हूँ, वो कुछ छुपा रहे हैं। मुर्तजा हुआ क्या है बताएं?
ये अफशार, ये फ्रॉड करके भाग गया है।
क्या फ्रॉड क्या है?
हाँ, 50-60 अरब तुमान पैसे चुपचाप उठाकर रफू चक्कर हो गया।
भाई क्या बात है
नीमा, वो तो बहुत अच्छे और खुशतवार आदमी नजर आते थे।
यानी जो भी आदमी खुशतवार, अच्छा और मोहतरम होता है वो फ्रॉडी नहीं हो सकता है?
अब उस 200 मिलियन का क्या बनेगा जो हमें दिया था?
क्या बनेगा, वो तो कर्जा है।
सच कहता है, उसे अपने टाइम पर कंपनी को वापस कर देंगे।
समाना के सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे?
यही जैसे नीमा कह रहा है वो कर्जा है।
ये उस वक्त की बात थी जब अफशार कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। अब ये पैसा लोगों का है। देखिए, इन पैसों को खर्च करना सही नहीं है, ये हमारी जिंदगी में नहीं आना चाहिए।
क्या कहती हैं आप? किन लोगों का पैसा? अबू खुदा रहा, इन बातों पर कान ना धरे, हमारी जिंदगी अब जाके थोड़ी सी बदल रही है।
फर्ज करो कि एक फर्ज जाके बैंक से लोन लेता है, कुछ अरसे के बाद बैंक मैनेजर फ्रॉडी निकलता है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो क्या पैसा बैंक को वापस कर दें? पैसा जायज नहीं है?
ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ बातें हैं। ये पैसा लोगों का है।
ये पैसा जो आपने लिया कंपनी के अकाउंट से लिया है, लोग शिकायत कर सकते हैं।
बेटी तुम मेरी तरफदारी कर रही हो या अफशार की? भाई इस मुल्क के जिम्मेदार मौजूद हैं, वो खुद सूरत हाल वाजे कर देंगे।
बहरहाल लोग पैसा छोड़ने वाले नहीं है, इसके कानूनी मराहिल तय होंगे।
तुम खामोश रहो,
तुम्हारा अपना पैसा होता तब भी यही कहती।
देखो पुलिस स्टेशन में मैंने उनसे कह दिया था कि ये कर्ज लिया है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। अगर कोई बात होती तो कहते कि ना अभी ला के वापस दो, उन्होंने नहीं कहा वापस ला कर दो, सिर्फ ये कहा तेहरान से बाहर मत जाओ। मैंने कहा ठीक है। क्या है, चाहो तो अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं, यकीन नहीं आता तो उनके मुंह से सुनवा देता हूं, चाहो तो अभी चलते हैं।
सुन रही है अम्मी, मैं सदके जाऊं, आप अपने आप को परेशान ना करें प्लीज।
मैं इस घर से हिलूंगी भी नहीं, जो नए घर में जाना चाहता है जाए।
पैसे
पैसे
भाई साहब एक मिनट इजाजत दे, मैं पूरी वजाहत करता हूँ, आप लोग खामोश रहे एक मिनट, मुझे इजाजत दीजिए एक मिनट, मैं पूरी वजाहत करता हूँ, मैं सब कुछ आपको वजाहत करके बताता हूँ, खामोश रहे, खामोश एक मिनट के लिए चुप रहे, मैं सब कुछ बताता हूँ। आप सबका अपनी जगह हक महफूज है, या आपको अपने फ्लैटों को पैसे मिलेंगे या मैं खुद बनाकर आपके हवाले कर दूंगा। खामोश। तमाम डॉक्यूमेंट्स और कागजात इंफॉर्मेशन ऑफिस के हवाले कर दिए हैं, मेरे अपने माल का भी नुकसान हुआ है, लेकिन मेरी अहमियत नहीं है, पहले आप लोग अहम हैं, लिहाजा आप लोग परेशान ना हो, जरूरी कार्रवाई की जाएगी। मैं ये बातें बिला वजह नहीं कर रहा हूँ, आप जाकर मेरे सबका रिकॉर्ड के बारे में तहकीक करें, इंस्पेक्टर साहब से कह देंगे, वो छानबीन कर देंगे।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर।
अमीरी तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
देखने आया था कि यहाँ क्या हो रहा है, हालात कैसे?
कुछ नहीं, अफशार को ढूंढ निकालूंगा और लोगों का पैसा उससे निकलवा लूंगा।
शाबाश, मैं सुन रहा था आप वाकई बहुत अच्छे आदमी हैं, खुदा आपको जजाए खैर।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुमने भी यहाँ पैसा
नहीं
दिया?
मैंने पैसे जमा नहीं कराए थे, मैं सिर्फ ये देखने आया सूरत हाल क्या है।
जरा रुके इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब।
असलानी साहब, क्या आपने एक्सीडेंट के बारे में पुलिस को कुछ बताया?
एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का इस मसले से क्या था?
कुछ नहीं,
तुम भी अपने काम पे जाओ।
ठीक
इंस्पेक्टर साहब, चले।
इंस्पेक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम।
या फिर हम लोग को हमारा पैसा वापस करें।